مومنین، یہ سورہ بنی اسرائیل کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جو آیات پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 34 آیت ہے. اور خبردار یتیم کے مال کے پاس نہ بھٹکنا مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کی پابندی کرو، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یتیم کے مال کے بارے میں کئی بار قرآن میں آ چکا ہے، سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے. تو یہ ہے کہ جب تک کہ وہ، اگر آپ یتیم کے مال کے ولی ہیں تو اس کو بہت ہی اس کے مال کو خرچے میں نہ اڑا دینا، جب تک کہ وہ عقل کی پختگی تک نہ پہنچ جائے. تو کہا گیا کہ مال کی حفاظت کرو، اگر آپ اس کے ولی ہو، اگر وہ نابالغ نہیں ہے، جب تک بالغ نہ ہو جائے، عقل کی پختگی نہ ہو جائے، تو اس کے مال کی حفاظت کرو. یہ حسن ہو، مطلب اچھی طریقے سے حفاظت کرو، اور عہد کی پابندی کرو کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یتیم کے بارے میں سرکار کی حدیث ہے کہ جو شخص 3 یتیموں کو کی ذمہ داری لے گا تو گویا اس نے راتوں کو نمازیں پڑھی زندگی بھر، اور دن کو زندگی بھر روزے رکھے، اور ننگی تلوار سے اس نے خدا کی راہ میں جہاد کرا ہے زندگی بھر. اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں اور وہ شخص دونوں بھائی بھائی کی طرح رہیں گے، جس طرح 2 انگلیاں رہتی ہیں جنت میں، بھائی بھائی کی طرح رہیں گے. تو یہ درجہ ہے یتیم کا. ہمارا استاد فوزی کہتے ہیں کہ اگر آپ ویسٹ کے اندر ہیں اور یہاں پر آپ اسلامک اسکول چلا رہے ہیں، اور اسلامک اسکول کے اندر آپ نے یتیم بچوں کو اسپانسر کرا ہے پڑھائی کے لیے، بچوں کو، یتیم بچوں کو نہیں، یتیم بچوں کو آپ نے اسپانسر کرا ہے، یعنی آپ نے یتیموں کو اسپانسر کرا، کیونکہ یہاں پر ہم لوگ یتیم ہیں، ویسٹ میں دین سے دور ہیں، یتیم ہیں. تو یہ اسلامک اسکول کو سپورٹ کرنا اور اسلامی معاشرے کو کی حفاظت کرنا ویس کے اندر، یہ اتنا بڑا عمل ہے. وہ اچھا، عہد کے بارے میں یہ ہے، کوئی بھی آپ عہد کریں، آپ کی اس کی پروسیس ہوگی قیامت دن. آپ نے کہہ دیا کہ ہاں میں آیا، یہ گیا، وہ گیا، اور وہ کچھ ہوا نہیں، جو کہ ہماری عادتیں، تو اس کی پروسیس ہوگی. خصوصاً سوشل لائف کے اندر انسان کو سوشل اسٹرکچر بگڑ جائے گا. اگر آپ نے کسی سے پرامس کری اور آپ نے کام نہ کرا تو آپ کا سوشل اسٹرکچر بگڑ جائے گا. ہمارے انڈیا پاکستان کلچر میں عہد کی کوئی پرواہی نہیں ہوتی. ہاں میں کر لوں گا انشاءاللہ کہہ دیا، مطلب کبھی نہیں کرے گا. اپنے کلچر کا الٹا ہی معاملہ ہے کہ ہاں انشاءاللہ مطلب وہ نہیں کرے گا. تو اللہ سبحانہ نے کہا کہ عہد کی پروسیس کی جائے گی. اور ایک جو خاص عہد جو یہ ہے کہ جو مسلمانوں سے پرسش کی جائے گی، وہ ہے کہ مولا علی کی ولایت کا جو عہد کیا تھا قدیر میں، اس کی پرسش کی جائے گی. وہ اوفل کیلا اذا کل تم وزین بالقسطاس المستقیم دال کا خیروں و احسن و تعویلا، اور جب پیمانے سے تولو تو پورا پورا ناپ کرو، اور تولو تو ترازو سے ٹھیک ٹھیک تولا کرو، اس میں بھلائی ہے اور اس کا انجام بہترین ہے. جب ناپ کرو تو پورا پورا ناپ کرو، اور ترازو سے تولو تو پوری پوری تولو. یہ چیزیں اسی میں ہماری بھلائی ہے. ذالک خیر ہوں و احسن و تعویلا، یہ خیر ہے اور احسن و تعویلا مطلب اس کا انجام بہترین انجام ہے. کیا ہوا سوسائٹی کے اندر کہ ہم نے بزنس ڈیلنگ کے اندر اگر ہم نے مکاریاں کری ہوں، کم دیا اور زیادہ دیا، کم دیا تو کیا ہوگا؟ قوم بھگتے گی، اکانومک لاس ہوگا، فساد ہوں گے. ہمارے دو ہی مسئلے ہوتے ہیں، ایک تو عہد پورا نہیں کرتے ہیں، دوسرا کیا ہے، تولتے نہیں ہیں. اسی میں ہمارے مسلم کنٹریز کے اندر پرابلم ہے. آپ ویسٹرن کنٹری میں جائیں گے دونوں چیزیں صحیح چل رہی ہیں، عہد بھی پورا کرتے ہیں، پرامس اور جو کام ہے وہ پورا کرتے ہیں. اس لیے وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکات رکھی ہیں، ہماری برکات اللہ نے اٹھا لی ہیں، کیونکہ ہم لوگ قرآن پہ نہیں چلتے ہیں. اگر کوئی کفار بھی قرآن پہ چلے گا تو اللہ اس کو اس دنیا میں تو اجر دے ہی دیتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہیں. قرآن دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے. اگر کفار بھی قرآن پہ دنیا میں چلیں گے تو اللہ اس کا اجر دنیا میں تو دے ہی رہا ہے. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اور جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، یقیناً کان آنکھ اور دل ہر ایک سے باز پرش کی جائے گی. کوئی بھی آپ دین کو، دین کے جو آپ کے عقائد ہیں اور دین کے جو عمل ہیں، آپ بغیر علم کے اس پہ نہیں چل سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ بغیر علم کے تم کچھ مت کرو، یعنی اگر آپ کو اصول دین جو ہیں توحید، عدل، نبوت، یہ آپ کو خود علم لینا پڑے گا اس کا. بغیر علم کے آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے، تو آپ کے لیے یہ علم واجب ہے کہ آپ، اور علم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، اور دل بھی دیا، دل مطلب سمجھ، اور ان تینوں کو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا تاکہ علم حاصل کریں. اور یہ آپ سے آپ کی آنکھ اس لیے دی کہ آپ صحیح چیز پڑھیں، آپ کے کان اس لیے دیں گے آپ صحیح چیز سنیں، آپ کا دل اس لیے دے گا آپ صحیح چیز سوچیں، اور علم کے ساتھ سوچیں اور صحیح کریں. آپ کی آنکھ سے پروسیس ہوگی، تو نے صحیح چیز دیکھی تھی، پڑھی تھی، تو نے صحیح چیز سنی تھی کہ تو یہاں وہاں سننے چلے گیا تھا، تو نے صحیح بات صحیح سمجھی تھی یا تو یہاں وہاں چلے گیا تھا قلب. تینوں سے پروسیس ہوگی تاکہ آپ صحیح رستے پہ چلیں. اگر ورنہ قیامت دن آپ کی آنکھ اور دل سب آپ کے خلاف ہوں گے کہ ہم کو صحیح استعمال نہیں کر رہا تھا، نہ تو صحیح لیکچر سننے گیا تھا میں، نہ صحیح کتاب پڑھی تھی میں نے، نہ صحیح سوچ رکھی تھی میں نے، جس نے کہہ دیا اس کے پیچھے چل دیا میں بغیر سوچے سمجھے. اس کی پروسیس ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے. اور جس کا علم نہ ہو اس کے لیے تقلید ہے. جہاں تک علم ہے اس کے بعد جو علم، تو اتنا علم ضرور ہو کہ سب سے لرنڈ آدمی کون ہے، اتنا علم بھی آپ کو ضروری ہے. ہاں اس معاشرے میں سب سے بڑا کون ہے جاننے والا، مرجع تقلید کون ہے، اس کے پاس بھی آپ کو خود ڈھونڈنا، آپ کو خود علم لانا پڑے گا کہ کون ہے، پھر اس کے پیچھے آپ چلیں. یا مطلب اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کا سسٹم بنایا، کون سا اسپیشلسٹ اس کے پاس جانا ہے، کون سا انجینئر جو آپ کا مکان بنائے گا. جس سے علم نہ ہو علم والے کو ڈھونڈیں آپ، لیکن آپ کے لیے ضروری کہ یا تو خود علم رکھیں یا علم والے کو ڈھونڈیں، کیونکہ ہر چیز کی پروسیس ہوگی. آنکھ کی پروسیس ہوگی، کان کی پروسیس ہوگی، دل کی پروسیس ہوگی. ایک شخص تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پاس آیا، بولا کہ مولا میں جب میرے گھر کے بازو میں میرا بیت الخلاء، میں جب بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو بازو سے ایک بازو میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے کنیز جو کہ بہت اچھا گانا گاتی ہے، اور میں سننے بیٹھ جاتا ہوں، تھوڑا میں دیر تک بیٹھتا ہوں گانا سنتا رہتا ہوں. مجھے تو مولانا کا استغفار کر، غسل لے، اگر تیری اس حالت میں موت ہو گئی تو تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ استغفار کر، غسل کر اور توبہ کر. کیونکہ پھر مولانا نے آیت پڑھی کہ آنکھ اور کان، آنکھ ناک اور دل سے سب سے پرسش کی جائے گی تم کیا کر رہے تھے. آپ دیکھیں کتنا میوزک چلتا، لوگ سنتے رہتے ہیں، کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں، سب کی پرسش ہونے والی ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تُخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بلا شبہ نہ تو تم زمین کو شگافتہ کر سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. گھمنڈ، ایروگینس. کئی بار انسان اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ ہوش حواس کھو دیتا ہے، تو اس کی چال بھی بدل جاتی ہے، اس کے ہوش حواس اڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے، یا گھمنڈ کے اندر. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اس طرح سے زمین پہ اکڑ کر نہ چلو، نہیں تو تم زمین کو پھاڑ دو گے. تم اتنے کمزور ہو کہ تم زمین پھاڑ دو گے کیا؟ یا تم اتنے بلند ہو جاؤ گے پہاڑ کے برابر چلے جاؤ گے؟ تم سے کچھ نہیں ہونے والا. تم حقیر ہو، تم ذلیل ہو، تم سب میرے آگے محتاج ہو. محتاج بن کے ہی رہو، اکڑنا نہیں، گھمنڈ نہ کرنا، کیونکہ تم کو جو کچھ بھی دیا میں نے دیا ہے. یہ سب آزمائش ہے تمہاری کہ تم کس طرح سے چلتے ہو. مومن کی آزمائش دو چیزوں میں ہوتی ہیں، بہت خوشی میں اور بہت غم میں. آدمی بہت غم میں بھی ہوش آواز کھو دیتا ہے، اور بہت خوشی کے اندر بھی ہوش آواز کھو دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان چیزوں سے دور رکھے. کل ذالک کان سیئو عند ربک مکروہا. ان امور میں سے ہر ایک کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. अब ये कुल्लू वाले का कौन सा है? इससे पहले ये तो मजलिस पढ़ी रहे, इससे पहले की मजलिस में भी अपन नसीहतें पढ़ चुके हैं। सारी नसीहतों के बाद अल्लाह तआला ने जितनी नसीहतें करी अब तक, उसके बाद अल्लाह ने कहा कुल्लू वाले का, सबके सब की चीजें जो मैंने तुम्हें नसीहत काला काना सैद रबी का मकरूहा, सारी की सारी बुराई अल्लाह के नापसंद है। देखें ये जो सूरा है ना, ये जो सूरा है ना, इमाम अज़मा का सूरा है, समझ लें आप, क्योंकि इसको पढ़ने से इमाम अज़मा की ज़ियारत होती है, आप असहाब में आते हैं। ये सारी बुराई हमें से दूर होना चाहिए, तब जाकर इमाम का साहब बनेंगे। सारी बुराई दूर होना चाहिए। कितनी अल्लाह ने एक के बाद एक वसीयतें करी हैं, सारे हमको असहाब बनना है, तो ये बनी इसराइल पर असहाब बन जाएंगे हम। कुल दाले का सब के सब अल्लाह के आगे मगर हुआ। दाले का मिम्मा अहवा इले का रब्बु का मिनल हिक्मा वला तजअल मालाई इलान आखर फतुलका फी जहन्नम मलूमन मदहूरा। ये हिकमत की वो बातें हैं जो आपके रब ने आपको वही के जरिए बतलाई हैं, और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद करार न देना, वरना तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा मलामा ज़दा धुतकारे हुए। ये सब ये जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिकमत की बातें बताई हैं, सारी के सारी जो नसीहतें करी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, कहा कि मैंने वही के जरिए करी हैं, और ये हिकमत की बातें, हिकमत की बातें ये वो बातें हैं जो पहली किताबों में भी आ चुकी हैं, क्योंकि ये फितरत, इंसान की फितरत के लिए हिकमत है, क्योंकि इंसान की फितरत नई चीज़ें हैं, और अल्लाह ने हिकमत वही के जरिए नाजिल करी जो पहली किताबों में कर चुका है, ताकि हमारा हमारी तरबियत हो, हमारी तरबियत हो। अल्लाह ने हर चीज़ में हिकमत है। आप सारी की सारी नसीहत देख लें, कितनी हिकमत की नसीहत है, हमारे समाजी फायदे के लिए कितनी हिकमत की चीज़ें, सारी के सारी समाजी फायदे के लिए, आखिर के लिए तो है ही यही, हमारी अपनी शख्सियत की मकबूलियत के लिए चीज़ें कितनी हिकमत की हैं। हम खुद अगर इन चीज़ों पर की इत्तबा करेंगे तो हम कितने खूबसूरत हो जाएंगे। और कहा गया, और परवरदिगार ने कहा वला तजअल मअल्लाह इलान आखर, अल्लाह के साथ किसी को माबूद न बनाना, वरना जहन्नम में धुतकारे हुए मलामत ज़्यादा धुतकारे हो जाओगे। खुदा के सिवा किसी को इंसान माबूद न बनाए। ये कहता चलूं, जब ये आयत आई थी कि जब ज़मीन पे चलो तो अकल के मत चलो, तो उसके बारे में काफ़ी अहादीस हैं, लाइन्स हैं कि इमाम हसन के पास कितनी सवारियां थी, तीसियों सवारियां थी, लेकिन कम से कम 20 बार पाप याद हज कराया उन्होंने, पाप याद, ताकि हक सारी रहे, पाप याद हज कराए। अभी आयत पढ़ी थी ना कि ज़मीन पे अकल के मत चलो, फिर उसके बाद सरकार खतनी मरतबत, जब इतने खाकसार थे कि ज़मीन पर बैठते थे तो आलती पालती मार के बैठते थे और सादा खाना अपने गुलामों के साथ खाते थे, सादा खाना, और भेड़ का दूध खुद धोते थे, और गधे पर सवारी करते थे बगैर ज़ीन के, बगैर के, ये उनकी खास चीज़ें थी, फेवरेट चीज़ें थी सरकार की, और छोटे बच्चों को सलाम करा करते थे वो, ये सब चीज़ें सरकार की चीज़ों का, सरकार ने कहा मैं कभी अपने ज़िंदगी में कभी ये चीज़ें तर्क नहीं करने वाला हूँ, इससे खास जो खसूसियत है कभी तर्क ना करूँगा, इसलिए महबूब तरीन बंदे परवरदिगार आलम के, इतनी सादगी थी उनमें। तो ये चीज़ें हैं कि हमको चाहिए कि अगर हमको असहाब इमाम बनना तो इस तरीके से हम बन पाएंगे, असहाब इमाम बनना। अफा असकाक कुम भी रब्बे कुम बिल बनी बतखाजा मिनल मलाइका ता इनाफा इन्नकुम लतकूलूना कौलन अज़ीमा। ये कैसी बात है कि अल्लाह ने तुम्हें तो बेटे दिए, तुम्हारे बेटे चुन लिए, और खुद अपने लिए मलाइका को बेटियां बनाया, ये बहुत बड़ी बात तुम अपनी जबान से निकाल रहे हो। भाई ईसाई तो बेटा बना ही चुके हैं, यहूद भी बेटा बना चुके हैं सर अल्लाह सुब्हान तआला का। अब ये जो मुशरिकीन थे, ये फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे, कितनी 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 अजीब बात वो कहा करते थे। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या कहा, तकूलु कौलन अज़ीमा, ये इतनी बड़ी बात तुम्हारी जबान से निकालते हो, कि एक तो अल्लाह के यहाँ काका औलाद अल्लाह की औलाद है, और वो भी औलाद वो जो कि उनको नापसंद है बेटियाँ, और खुद के लिए बेटे बना, मतलब इस तरीके से वो अपने हक में जुल्म करते हैं। वलकत सर्रफना फी हादिल कुरान लियतदक्करू वमा यजीदुन हुम इल्ला नफूरा। हमने इस कुरान में हकाइक को बदल बदल कर मुख्तलिफ अंदाज में लोगों को समझाया ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर वो हक से दूर जाते रहे। यही होता है कि अगर आप आपके अंदर कुफ्र आ गया है, अगर आप में निफाक है, अल्लाह सुब्हान अल्लाह कितनी आयतों को फेर फेर के बताया है तौहीद की, फेर फेर के बताया है वही की वही अलग तरीके से, लेकिन होगा क्या, नफरत और सरकशी और ही बढ़ेगी। और आप ही देख लें, आप करके देखना, आप किसी को आप कुरान पढ़ के सुना किसी को कुफार को एक दो बार तो बहुत मीठे सुनेगा, उसके बाद आपसे मुंह मोड़ लेगा, पांचवी बार बात करेंगे तो आपसे झगड़ना शुरू कर देगा। ये कुरान हक किताब है, जो जो कहता है वो दिखता है हमको, पढ़ ले आपसे बात करना बंद कर देगा। ये हक है, हालांकि सीधी सादी किताब है, सीधी बात करती है, दलील के साथ बात करती है, फिर भी समझ में नहीं आती है। सोचे आप, फिर भी फितरत की किताब है हमारी, फिर भी समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? क्यों? नफरत बैठी हुई है, नफरत बैठी हुई है, दीन से दूर है, शैतान का गलबा है। उल्लाह काना माओ आलहतुन कमा यकूलूनो इदल अब्तगू इला दिल अर्श सबीला सबीला। कह दीजिए कि खुदा के साथ कोई और माबूद होता जैसा कि ये लोग कह रहे हैं तो वो साहिब अर्श तक पहुंचने के लिए जरूर कोई राह निकालते। सुभान अल्लाह, क्या कहा कि अगर खुदा के सिवा वो कोई माबूद होता जिसकी ये बात कर रहे हैं तो वो अपना रास्ता साहिब अर्श की तरफ निकालने की जरूर कोशिश करते वो, क्योंकि अगर कोई दूसरा खुदा होता तो हर एक में लालच होता है, वो कहता है अगर मुझे खुदा बनना है तो मैं अर्श की तरफ जाऊं और रब्बुल अर्शिल अजीम का अर्श छीन लूं, क्योंकि मैं खुदा जब तक ना बन पाऊंगा जब तक कि उसके इख्तियारात मैं छीन ले लूं, मैं खुद अर्श पे ना बैठ जाऊं, खुद मैं अपना किबराई का ताज अपने सर पर ना रख लूं। तो अल्लाह कहता है अगर ऐसा होता तो जरूर मेरे पास आते ये लोग, कोई नहीं आया, कोई नहीं आता, कहता आके ढूंढते मुझे और मेरा हक मेरे अर्श को छीनते हैं मुझसे, कोई नहीं आया आज तक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सब तौहीदी आयतें हैं, बस की आयतें हैं, अगर आदमी बस में चले जाए तो दीवाना हो जाए। ये सब समझ समझ की बातें हैं, यही तो अल्लाह की मोहब्बत, यही तो इश्क है। अल्लाह जिस तरीके से बात करता है, अर्श की बात करता है, कुर्सी की बात करता है, मोमिन का दिल वहीं होता है, यहाँ नहीं होता है। अब ये जो इसकी बात अल्लाह ने कहा, ये भी सब इरफान का, उसके बाद कहा सुभानहू तआला अम्मा यकूलून अलुवन कबीरा। अल्लाह पाक और बुलंद है कि वो मुशरिक जो कुछ कह रहे हैं वो उससे बहुत ज्यादा आला और बढ़ता रहे। क्या आला और बढ़ता रहे? सिर्फ ये मोमिन को समझ में आता है, आरिफ को समझ में आता है। सुभान, जब सुभान आता है ना तो रोना शुरू कर देता है मोमिन। वो ताला, ताला में वो ताला उसको कहते हैं जो सबसे आला हो, उसको ताला कहते हैं। कहा कि ये जो कहते हैं, ये जो कह रहे हैं, इस तरीके से बातें कर रहे हैं अल्लाह सुब्हान तआला में, उससे काफी बुलंद बढ़ता रहे। तुसब्बिहु लहु समावातु सब्उ वल अर्दु व मन फीहिन्न व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही व ला किल्ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफूरा। सातों आसमान और जमीन और उनके तमाम रहने वाले अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं और हर शे उसकी हम के साथ उसकी तस्बीह में मसरूफ है, अलबत्ता लोग उनकी तस्बीह को समझने से कासिर हो गए। बेशक वो अल्लाह निहायत बुर्दबार और मगफरत करने वाला है। अल्लाह सुब्हान तआला कह रहा है कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें और जो भी रहने वाले सब उसकी तस्बीह करते हैं। कहा ये क्या बोल रहे हैं कि उसके साथ कोई शरीक बनाते हैं, शरीक होते तो लड़ने आ जाते मेरे साथ, अर्श छीनने आ जाते। कहा ऐसा नहीं है, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, सारे सातों आसमान ज़मीन मेरी तस्बीह करते हैं उसमें रहने वाले भी, लेकिन तुम समझते नहीं हो, तुम समझते नहीं। वला किल्ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह नहीं समझते हो। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, वो बड़ा बुर्दबार और बख्शने वाला है। तस्बीह तस्बीह ये नहीं कि मेटाफोरिकली तस्बीह हो रही है, सिंबॉलिक हो रही है, ऐसा नहीं है, बीजा नहीं बहस करिए, हकीकत तस्बीह करते हो, वाकई तस्बीह करते, ऐसा नहीं कि उशारा में कुछ होता होगा, ऐसा नहीं है कि बस कह दिया अल्लाह ने, ऐसा नहीं है, हकीकतन तस्बीह करते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आती उनकी तस्बीह। तस्बीह से क्या मुराद है, बड़ी अच्छी बात है मिर्ज़ा ने, बड़ी गहरी बातें करी हैं। हर जो चीज़ हर शे है ना उसकी अपनी एक अपना खुद, हालांकि वो अपने से जिंदा नहीं है, लेकिन हर शे को अपनी एक कॉन्शियसनेस है अपने अंदर उसकी, पहाड़ हो जमीन। दाऊद के साथ तस्बीह करते थे ना पहाड़, कुरान में है ना, समझ में आ गई बात, अब कुरान में आया था दाऊद के साथ तस्बीह करते थे वो करते थे, बात समझ में आ गई दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ। तो हर शे की अपनी एक इल्म है खुद के बारे में, हर शे का अपने बारे में इल्म रखता हो, और हर शे उस जानती है कि उसके अंदर खामियां हैं और वो उसको रिस्क चाहिए अपने हिसाब का। हर शे जानती कि उसका माबूद है, अगर वो उसकी और वो उस अपने माबूद की तरफ तवज्जो देते रहते हैं हमेशा, और अगर माबूद की तवज्जो एक पल के लिए भी पता हो जाए तो शे फना हो जाती है, वो शे फना हो जाती है। हर शे को इसको इसका इल्म है, तो इसलिए अपनी नाकसी और अपनी मोहताजी की वजह से वो तस्बीह करते हैं। हर शे अपनी मोहताजी की वजह से तस्बीह करती है कि मोहताज है परवरदिगार आलम के, और तस्बीह भी करते हैं, सजदा भी करते हैं, और उसकी इबादत भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन क्या कि हमारे कान उसको समझ नहीं पाते। और अल्लाह का सुभान अल्लाह कि वो हलीम भी है और गफूर भी है, हिल्म है उसके पास, क्योंकि वो हिल्म बुर्दवार इसलिए है कि उस वो ऐसा नहीं कि वो बुर्दवारी से रहता है, क्यों बुर्दवार है खुदा ने करी, उसको मालूम है कि मौका हम चूकते हैं, वो मौका थोड़ी चूकता है, उसका मौका उसका गुलाम है, तो वो हिल्म से बैठा रहता है। और बख्शने वाला क्यों, क्योंकि उसके पास इतना गनी कि अगर बख्शे तो उसको कोई नुकसान भी नहीं होता है, इसलिए हलीमन गफूर है, ना तो उसको मौका चूकता है, ना उसको कोई दे दे तो कुछ नुकसान हो जाता है। परवरदिगार आलम इस तरीके का परवरदिगार आलम है। तो तस्बीह के बारे में सरकार फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने लगा तो अपनी दोनों बेटों को कहा कि मैं तुमको नसीहत करता हूं कि तुम खुदा की तस्बीह करा करना, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, बेशक ये हर शे की इबादत है जो कि उससे रिज़्क तलब करती है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था, समझ में आ गया, वही जो अपने ने कहा वही नूह अलैहिस्सलाम ने सरकार फरमाया, नूह ने वसीयत करी थी अपने दोनों बेटों को कि हर शे उसकी इबादत करती है और उससे रिस्क हासिल करती है। तो कहा था कि ये कहते रहना सुभान अल्लाह व बिहम्दी, हम भी करें क्योंकि हर शे कर रही है। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं कि हर शे खुद हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। कहा गया अगर तुम देखो कि दीवार के अंदर दरार पड़ रही है तो ये उसकी तस्बीह दीवार की, वो दीवार की तस्बीह है। और फिर मासूम फरमाते हैं कि किसी जानवर के मुंह पे न मारना, वो तस्बीह करता रहता है। और फिर इमाम सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं कि कोई जानवर का शिकार जब तक ना होता जब तक कि वो अल्लाह की तस्बीह बंद ना कर दे, शिकार हो जाता है उसका। तो किसी ने सरकार से पूछा कि सूखे दरख्त की तस्बीह क्या, क्या कि सूखे दरख्त को जब तुम घर में इस्तेमाल करते हो तो उसमें आवाजें निकलती कई बार, वो तस्बीह उसकी। फिर सरकार कहते हैं कि मेंढक को कभी ना मारना, उसकी आवाज उसी तस्बीह है, वो मेंढक की जो आवाज होते टर रहता है उसी तस्बीह है। सरकार ने बीबी आयशा से कहा कि मेरे कपड़े धो दो, तो बीबी ने कहा कि मैंने तो ये तो कपड़े आपके कल ही धोए थे। कहा सरकार ने फरमाया कि इस पे धब्बे लग गए, जब धब्बा लग जाता है कपड़ों पर तो तस्बीह करना बंद कर देता है अल्लाह की। फिर सरकार ने फरमाया कि कोई जानवर ना होगा, कोई कीड़ा ना होगा, कोई चींटी नहीं होगी, कोई घोड़ा ना होगा, कोई कुछ नहीं होगा जब तक उसकी कजा नहीं आती, जब तक वो तस्बीह बंद नहीं कर दे अल्लाह की। मोहताज है हर चीज अल्लाह की। एक बार सरकार ने देखा कि दो शख्स, कुछ लोग अपनी सवारियों में सवार थे और बातें कर रहे थे, खड़े हुए थे बातें कर रहे थे, मतलब कि जानवरों तकलीफ दे रहे थे। तो सरकार ने एक लंबी बात कही और उसमें कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब जानवर को जबरन तकलीफ दे रहे हो, बातें करो, नीचे उतर जाओ। लेकिन खास जो सरकार ने जो ये कहा कि हो सकता है कि ये जो सवारी है सवार से बेहतर है, क्योंकि वो हो सकता है खुदा को ज्यादा याद कर रही सवार से। हमको जानवर की इज्जत करना चाहिए, हो सकता है हमसे बेहतर तस्बीह कर रहे हो। आपकी क्या दलील है कि आप खुदा के पैगंबर हैं? तो सरकार वो कंकर उठाते थे, वो कंकर उनके हाथों पर तस्बीह करने लगते थे, जो कि हमको फिर समझ में आती थी। हालांकि वो तस्बीह फिर भी करते रहते हैं, लेकिन हमारे कानों को समझ में नहीं आती है, लेकिन उस वक्त अल्लाह उसको जाहिर करता है, तो तस्बीह करते थे। फिर सरकार मदीने में जब खुतबा देते थे तो एक 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 दरख्त था खजूर का, उस पर टेक लगा के खुतबा देते थे, टेक लगा के। जब लोग ज्यादा आने लगे तो लोगों ने सरकार से कहा, सरकार ये तो लोग बहुत हो गए, आपके लिए मेंबर बना देते हैं। तो सरकार मेंबर में बैठे, तो जो था खजूर का तना, वो चीखने लगा कि उसको आज छोड़ दिया सरकार ने। तो सरकार उसके पास गए, उसको सहलाया, तो बच्ची की तरह रोने लगा, बच्ची की तरह रोने लगा। आंखों में आंसू जाएंगे इंसान के, सोचे ढंग से तो इंसान के आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि हर चीज की अपनी एक कॉन्शियसनेस है, हर चीज का अपना एक इल्म है और हर चीज की अपनी तस्बीह है। जअलना बैनक व बैन الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا, और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो उस वक्त हम आपके और उन लोगों के दरमियान जो आखरत पर ईमान नहीं रखते हैं एक छुपा हुआ पर्दा हायल कर देते हैं। यही होता है कि जब जो लोग आखरत पर ईमान नहीं रखते हैं और जो लोग अपनी हर धर्मी पर अटके रहते हैं, जब कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह सुब्हान तआला एक हिजाब डाल देता है ताकि उसको कुरान समझ में ना आए, क्योंकि वो जिद्दी है और ये उसकी जिद जो होती है वो उसके नफ्स की वजह से होती है, ईगोटिज्म। जहाँ ईगोटिज्म दिखाया अल्लाह का, लेकर अगर आपने किसी को बुलाया, आपने दावा दिया और उसके दिल में ये आया कि ये मुझे कन्वर्ट करने को बैठा हुआ है और वो अड़ गया आपसे कि ये मुझे कन्वर्ट करने बैठा है, एकदम शैतान उसे फसफसा डालेगा, तुझे कन्वर्ट करने बैठा है अल्लाह ताला, और जहाँ ईगो आया तो अल्लाह ताला उस पर उसकी उसकी एरोगेंस पे उस पर हिजाब डाल देता है। وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ अदबारहिम नफूरा, और हम उनके दिलों पर एक गिलाफ चढ़ा देते हैं कि वो कुछ समझ ही नहीं सकते और उनके कानों में बहरापन पैदा कर देते हैं। और जब आप कुरान में सिर्फ अपने रब का जिक्र करते हैं तो वो नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं। अल्लाह अकबर, या आखिरी आयत आज की मंजिल की। जो लोग कुफार हैं, आखिरत पर यकीन नहीं रखते हैं, हर दरमी बैठे हैं, तो जब अल्लाह सुब्हानहु तआला उनकी हट धर्मी की वजह से उनके दिलों पर गिलाफ चढ़ा देता है और उनके कानों में बहरापन पैदा कर देता है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। और जब खुदा का जिक्र, वाहदहू का जिक्र कुरान में करा जाता है, तो कुफार लोग जब अल्लाह का जिक्र होता है वाहदहू का, तो वो लोग मुंह मोड़ लेते हैं। ये होता था कि जब सरकार काबे के पास में कुरान पढ़ा करते थे तो जैसे ही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते थे लोग भाग जाते थे नफरत से, वो जब बिस्मिल्लाह के बाद फिर शुरू करते थे तो फिर सुनने आ जाते थे कुरान, क्योंकि उनको अल्लाह से इतनी नफरत थी, अल्लाह से नफरत थी। एक बंदा ऐसा अल्लाह ने रखा है कि अल्लाह ने उसको भी निशानी बनाया है, क्या इंसान मोमिन के मुनाफिक, वो है अली इब्ने तालिब। एक बंदा अल्लाह ने ऐसा रखा है जो अल्लाह ने अपने घर में पैदा करा और घर में शहीद कराया, कहा कि मैं इसको निशानी रखूंगा, बहुत बड़ा नमाजी, बहुत बड़ा परहेजगार है, हुसैन हुसैन करता है, सब करता है, अली का नाम आता तो खुश होता है, उसका चेहरा सियाह पड़ जाता है। यही निशानी है, यही निशानी मोमिन की। कर लो आप सब कुछ, सरकार की बातें कर लो सब, अली के नाम से क्या होता है उसके, अली के नाम से क्या होता है? ये अल्लाह ताला ने, क्योंकि वो ऐनुल्लाह है, वो अल्लाह के मजर है, यदुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, उन्होंने तलवारें चली हैं अल्लाह के लिए, अगर आप मोमिनों से मोहब्बत करो वरना नफरत करो। तो मैंने उसकी बात करी थी सूखे तने की, जो चूंकि रोया था जब सरकार उससे टेकना लगाए थे, तो सरकार से इतनी मोहब्बत थी उस तने को, इतनी मोहब्बत थी कि वो रोने लगा। और सरकार ने कहा था कि मेरी आलसी मोहब्बत करना, जब सरकार ने जब उस तने को सरकार से इतनी मोहब्बत थी इस खजूर के तने को, तो हमको उनकी आल से कितनी मोहब्बत होना चाहिए। और इस कौम ने उस आल को शहीद करा, इमाम हुसैन को शहीद करा। अभी हमने पढ़ा कुरान में कि जब हम कुरान वा करत कुरान जालना, जब तुम कुरान पढ़ते तो हम तुम्हारे उनके बीच में एक पर्दा हायल कर देते हैं। इसी तरह जब इमाम हुसैन 10 मौलाओं को नातिय कुरान जब नसीहत कर रहा था तो पर्दा हायल हो गया था ख्वाहिशों का। मौला बुलाते थे, कुफार न मानते थे। मौला ने कहा देखो मैं हक की तरफ बुला रहा हूँ, तुम मेरी तरफ आओ, वो न सुनते थे। मौला ने कहा क्या मैं रसूल का बेटा नहीं हूँ, क्या मैं अली का बेटा नहीं हूँ, क्या हक की तरफ नहीं हूँ? कहा हाँ आप हैं, लेकिन क्या हुआ? अरे ईगोटिज्म, नफ्स परस्ती, दुनिया परस्ती ने मौला को शहीद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।